نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياءه إلا المتقون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يرشد قلوب الله ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری خوشیاں ہمارے غم ہمارا چین سکون بیماری صحت مندی ہماری عزت ذلت کھانا پینا جسم کے اعضا ساری چیزیں پراپر اس وقت صحیح کام کرتی ہیں جب تک اللہ کا فضل رہتا ہے اور ایک سانس کے بعد جو دوسری سانس آتی ہے وہ ہم اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں تو ہوتا ہے کیا ہم لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں اس طرف تو اس کی وجہ سے اللہ سے بغاوت یا اللہ کی نافرمانی اور سرکشیاں شروع ہو جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید روٹین میں ہم ایسے ہی ہیں شاید فٹ فاٹ اور ایسے ہی شاید رہیں گے عافیت چین سکون ہمیں ملا ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کو بھی مل رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عافیتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں صحت مند ہم لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ اللہ ہمیشہ میں سب کو ایسا رکھے عافیت سے اللہ رکھے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ کی مسلسل نعمتیں اور شکم شیری ہمیں میسر ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا جو نفس ہے وہ بتکنا شروع ہو جاتا ہے یہ انسان کی ایک جبلت ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے مثل فرعون کے انسان بننے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس توازن کو بندگی کے لیول کو نارمل کرنے کے لیے معتدل کرنے کے لیے پھر بعض دفعہ اللہ پاک کو پریشانی دے دیتے ہیں کوئی تھوڑا سا غم دے دیتے ہیں یا کوئی بیماری ہلکی سی دے دیتے ہیں وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا وہ بھی تاکہ بندے کے اندر رعونیت فرعونیت میں اکڑ تکبر غصہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی دھلائی ہو جائے صفائی ہو جائے اور جب اللہ کی مشیت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ پاک کو پریشانی دور فرما دیتے ہیں تو یہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا تو اللہ رب العالمین کی بڑی کرم نوازی ہم لوگوں پر ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں یہاں تک علماء کرام نے کتابوں میں لکھا والوں کے ساتھ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں اس وقت بھی ایک غذا کی نالی میں غذا ڈالتا ہے فرشتہ اور ایک سانس کی نالی میں سانس کا عمل تنفس کو جاری رکھتا ہے اب بتائیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں دو فرشتے مقرر ہیں کیونکہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سانس بھی لے رہے ہیں سامنے آ کے بتنا سامنے آ
کے
اچھا تو دو فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس دوران رکھے ہوئے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سانس بھی لے رہے ہیں اندر بھی لے رہے ہیں سانس باہر بھی لے رہے ہیں بعض دفعہ کبھی پھندا لگ جاتا ہے دیکھا کھانا کھاتے ہوئے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں لگتا ہے موت واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم کبھی چھینک آتی ہے ہمیں تو ہم شرعی مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اور جو سنے وہ یرحمک اللہ بولے تو میڈیکل سائنس نے اس کو غیر مسلموں نے اس پہ تحقیق کری کہ مسلمان یہ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جب آدمی چھینک مارتا ہے چھینک جب اس کو آتی ہے تو چند سیکنڈ کا جو ایک نینو سیکنڈ ہوتا ہے اس وقت حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے ہمیں اس کی تحقیق نہیں پتہ تھی لیکن رسول اللہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیے کہ الحمدللہ کہو اللہ کی تعریف بیان کرو کہ اللہ نے بچا لیا ورنہ اگر بند ہوتی تمہاری دل کی حرکت تو دوبارہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بند ہو جائے دوبارہ دل دھڑکتا ہی نہیں تو ہم اللہ کے بال بال جکڑے ہیں بری طرح سے جکڑے ہیں بے انتہا جکڑے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دستے قدرت میں نہ ہو ہماری سارے مسئلے ہمارے رب العالمین کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں وہی مصیبتیں بھیجتا ہے وہی پریشانیاں بھیجتا ہے اور مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو بھی ہٹانے والا بھی وہی ہے سب کچھ اس کے اختیار میں تو جب اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے معبود ہے پالنے والا ہے تو بھائی جب ہم لوگ اس کے اتنے محتاج ہیں تو پھر ہمارا تعلق بھی پھر اللہ رب العالمین سے کیسا ہونا چاہیے ये सोचने वाली बात है ना। अगर किसी और के हाथ में हमारी बागडोर होती तो हम उससे बना के रखते, लेकिन हम इस तरफ या इस तरफ सोचते नहीं हैं कि कितना हमारे मामला मजबूत अल्लाह रब्बुल आलमीन से होने चाहिए। तो ये कुरान पाक की जो आयत पढ़ी गई थी भी शुरू में, इन औलिया हुलमुत्तकून, ये अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ और उसकी तशरीहात अलग अलग होती हैं। तो हज़रत वाला हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ़िल्लाह हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह ने एक बयान फरमाया था जिसका नाम था अल्लाह ताला का पैगाम दोस्ती। अल्लाह ताला का पैगाम दोस्ती, वो किताबची की शक्ल में भी मौजूद है वो, तो बहुत ही हसीन बयान था हज़रत का। तो उसी में से कुछ बातें याद आ रही हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि अगर कोई हमें कांस्टेबल बोले कि भाई आप मुझसे दोस्ती कर लें मिसाल के तौर पर, और आपको कभी कोई पुलिस थाने की ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन करें, मैं मोबाइल लेके आ जाऊँगा। दूसरी तरफ आईजी बोले कि भाई आप जो है मुझसे दोस्ती कर लीजिए, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? और मसला ये कि एक से दोस्ती करनी है दोनों से नहीं, तो किसको? हर अकलमंद आदमी कहेगा भाई कांस्टेबल कांस्टेबल है, उसकी पावर कम है, आईजी होता है, आईजी के पास तो पूरी बटालियन होगी, तो उसके जो मामलात होंगे आईजी के वो ज़्यादा पावरफुल है। तो हम लोग अखली तौर पे हर इंसान चाहेगा मैं ज़्यादा पावरफुल से बना के रखूँ, यही मामला है तो समझाने के लिए। लेकिन आज होता क्या है मामला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा कौन पावरफुल है, अल्लाह से ज़्यादा कौन ताकतवर है? आईजी तो बोल रहा है दोस्ती की, हम तो फौरन दौड़ के पहुँचेंगे उसकी तरफ, भाई आईजी ने बुलाया बुरा ना मान जाए वो, उसने बुलाया दो दफ़ा फ़ोन कर दिया मैंने बुलाया था कल आई नहीं, तो आप माफ़ी मांगेंगे, शर्मिंदा होंगे कि सर आप फिक्र ना करें मैं कल हाज़िर होता हूँ, आज ये मसला हो गया था, दौड़े दौड़े जाएंगे यार आईजी मुझे पूछ रहा है, आईजी दोस्ती की नहीं कह रहे, हम दीवानगी वाला हमारा ही हो जाएगा, और कोई आर्मी का बंदा कह दे तो वो जी और ही हवा में उड़ जाएंगे फिर तो, है ना। तो ये हमारे दुनियावी मामलात हैं। इसी तरह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में एक ऐलान फरमा रहे हैं, औलियाहुलमुत्तकून, मैं अपना वली बना लूँगा, अपना दोस्त बना लूँगा अगर तुम तकवा अख्तियार कर लो। हमें खुशी नहीं हुई, हमें खुशी नहीं हुई, दुनियावी को मनसब का आदमी हो उसकी कोई दोस्ती की ऊपर ऑफ़र आ जाए तुम खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे हैं मैं तुम्हें अपना वली बना लूँगा, अपना दोस्त बना लूँगा अगर तकवा अख्तियार कर लो, गुनाहों को छोड़ दो, बना दूँ। तो समझ में नहीं आ रही बात, चेहरे लटके हुए नज़र आते हैं, हाँ ठीक है खुशी नहीं हो रही, तो भाई ये क्या बेवकूफ़ी वाली मामला है? क्या एक दुनियावी मनसब वाला क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा हो जाएगा? दुनियावी मनसब वाले तो धोखे भी दे जाते हैं, बाद लोग वादे तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि मुसीबत भला आती है फ़ोन करो तो फिर फ़ोन बंद मिलते हैं, या लोग फ़ोन उठाते नहीं है लाइन काट देते हैं जब परेशानी आती है। वैसे तो बड़ी यारियाँ चल रही थी, तो पता चला सारी दोस्ती के पिंदार और जितनी भी बढ़ाई थी दोस्ती की, जितनी भी दावे थे, जितनी भी उम्मीदें थी, सबका बेड़ा गरक हो गया, सब शराब निकला, सब धोखा निकला, क्योंकि दुनिया में धोखेबाजी बहुत है, बेवफाइयाँ बहुत हैं। तो पता लगा कहाँ कहाँ दिल दिए हुए थे, किस किस से बना के रखी हुई थी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं मैं तुमको अपना वली बना लूँगा, दोस्त बना लूँगा। तो जो कोई दुनिया में हमारा कोई जिगरी कोई दोस्त हो और कोई परेशानी अगर आ जाए, तो वो सच्चा अगर हमारा कोई मुखलिस दोस्त होगा तो कहेगा यार मैं आप परेशान हो फिक्र नहीं करो, जो भी परेशानी है वो आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, वो दिन रात एक कर देगा आपको उस परेशानी से निकालने के लिए, क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है। तो जब दुनियावी ये मामले आते हैं, तो जब रब्बुल आलमीन का कोई दोस्त बन जाएगा तो रब्बुल आलमीन कैसे उसको परेशान छोड़ देंगे, उसको कैसे रोता बिलकता तड़पता हुआ छोड़ देंगे? एक इंसान की तो ऐसी ऐसा ज़र्फ ऐसा उसकी वफ़ा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह हम ध्यान ही नहीं देते। तो अब हज़रत वाला रहमतुल्लाह ने इसकी तशरीह यूँ भी फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हाथ दस्ते करम दोस्ती के लिए बढ़ाया हुआ है। हज़रत हाथ उठा के भी बावजावा दिखाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शिकायत करता है आपसे तो आप हाथ क्यों बढ़ाता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान पाक की जो आयत में बयान फरमाया अपना वली और दोस्त बना लूँगा अगर तकवा अख्तियार कर लो, तो अल्लाह की तरफ से बढ़ावा एक दोस्ती का हाथ अल्लाह ने बढ़ा दिया। अब कौन है जो दौड़ के नहीं पकड़ेगा अल्लाह का हाथ? कोई बड़ा कोई मनसब का आदमी और बोले कि मैं आपको दोस्त बनाता हूँ, ये लीजिए मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया, तो आप उछल के दौड़ के पहुँचेंगे कि मैं फ़ौरन पकड़ता हूँ आपका हाथ, फ़ौरन मुसाफा करेगा, ये होगा ना ऐसा? वो शर्मिंदा हो जाएगा यार, इतना बड़ा आदमी वजीर आदमी मुझे हाथ बढ़ा रहे हैं। तो भाई अल्लाह पाक भी तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो अल्लाह से बड़ा कौन है? अल्लाह ने ऐलान दोस्ती कर दी, हम जैसे गुनाहगार नापाक लोगों के लिए कि मैं तुम्हारी दोस्ती का विलायत का ताज तुम्हारे सरों पे रख दूंगा, अपना दोस्ती तुमको अता फरमा दूंगा अगर तुम मेरा ये बढ़ के हाथ पकड़ लो मेरी दोस्ती का, मेरी दोस्ती कबूल कर लो। लेकिन शर्त क्या है मेरी दोस्ती की कि तुम गुनाहों को छोड़ दो, तकवा अख्तियार करो। ये नहीं है कि मौत तक कभी गुनाह नहीं होगा, मतलब वही बात कि आदतन किसी गुनाह में उबतला ना रहो, कभी तौबा अगर कोई गुनाह हो जाए, खता हो जाए, गुनाह कबीरा हो जाए, फौरन तौबा कर ले आदमी, तो वो आदमी भी दायरे महबूबियत से उसका अखराज नहीं होगा, विलायत से, तकवा से, दोस्ती से अखराज नहीं होगा उसका, क्योंकि वो गुनाहों पर इसरार करने वाला नहीं है। खता हो जाती है तौबा कर लेता, वैसे बचता है वो जान लड़ा के, तो ऐसा आदमी भी अल्लाह की दोस्ती के दायरे के अंदर रहेगा वो। और दूसरी बात ये हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैहि एक और इरशाद मिसाल देके फरमाते थे कि देखो हर आदमी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दोस्ती रखता है। अभी तो आईजी तो एक मिसाल है, लेकिन एक आईजी किसी आम आदमी को कभी नहीं कहेगा कि भाई मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूँगा। वो क्यों कहेगा भाई, उसके सर पे क्या सींग निकले हैं, क्यों करेगा वो ऐसा, है ना। आईजी अगर होगा तो वो तो फिर किसी अपने से बड़ी पोस्ट के कोशिश करेगा कि अपने से बड़ा जो ऑफिसर है मैं उनसे दोस्ती करूँ। तो दुनियावी मामलाते हैं, तो कोई थर्ड क्लास को या अपने से कमतर को अपना दोस्त बनाना तो एक तरफ साथ बिठाना, खाना खिलाना, बातचीत, सलाम दुआ भी पसंद नहीं करता, अपने के बराबर से अपने से बड़े लेवल की तरफ आदमी नज़र करता है। ज़्यादातर लोगों के मामला होते हैं, और ये सारे इसकी चीज़ें होती हैं, इनका ताल्लुक जो होता है वो तकब्बुर से होता है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है तकब्बुर का, तो ये आम हालात में बता रहा हूँ जो अक्सर हम इंसानों की जो सोच होती है। तो दुनिया के मामलात में हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड देखते हैं, शादी ब्याह के मामलात होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मनसब देखे जाते हैं, स्टैंडर्ड देखा जाता है, हम पल्ला सारे मामलात देखे जाते हैं, दोस्ती यारियों में भी देखे जाते हैं, उसके बाद हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं जब हमारे मेयार पे पूरा उतरता है। लेकिन भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दोस्ती का ऐलान किया तो हमारा तो कोई मेयार ही नहीं है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे हम चाहे कितना ही बैतुल खला चले जाएँ और कितना ही फुजला और पेशाब पखाना हम करके आ जाएँ, लेकिन जब हम अपना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराएंगे पेट का, उसमें थोड़ा सा पखाना या गुमूत उसमें नजर आएगा, होगा ना। कितना ही ऊपर से नहा लें, धो लें शैम्पू से खूब अच्छी तरह से, कितने ही परफ्यूम छिड़क लें, लेकिन अंदर तो हमारे गंद भरी हुई है ना। तो ऐसी पलीत मखलूक को और नुतफ़ नापाक को जो अल्लाह पाक कुरान पाक में जगह जगह नुतफ़ नापाक को अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम गुनाहों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपना वली और दोस्त बना लूँगा। अल्लाह अपने स्टैंडर्ड से कितना नीचे उतारा है, कितना नुजूल किया अल्लाह ने हमारे लिए कि तुम सिर्फ गंदगी छोड़ दो, मुझे नाराज़ करना छोड़ दो, मैं स्टैंडर्ड नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं इतना पाक हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह का क्या नाम है, एक सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। और अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं तुम एक नापाक हो, नुतफ़ नापाक से पैदा किया, एक पाक का नापाकी से क्या ताल्लुक, एक भंगी का जमादार का बादशाह से क्या ताल्लुक। हम तो अल्लाह के सामने ऐसा ही है ना, भंगी जैसे, अल्लाह की तो ऐसी पाक बात है, लेकिन वो कह रहा है मैं तुम अपना वली बना लूंगा, दोस्त बना लूंगा, हमें तो खुशी से मर जाना चाहिए। अल्लाह कहाँ आपकी बात और कहाँ मुझ जैसा पलीत, कहाँ आपकी दोस्ती और कहाँ मैं, कोई आपस में इंटरलिंक कोई है ही नहीं कोई मामला। लेकिन हमारे दिल में अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का किसी किस्म का कोई दिल में हमारे हरकत पैदा नहीं होती, ना खुशी पैदा होती है। दुनिया के हम लोग अक्सर कीड़े बने रहते हैं, दुनिया ही हमारा मकसूद होती है, खाओ पियो और मर जाओ। खूब हर इंसान की सोच है तो काफिरों की सोच होती है, खाओ पियो और बत्ती बुझाओ, सो जाओ, यानी बस बैंक बैलेंस जमा करो, शादियां करो, मज़े करो, दुनिया के खाओ पियो, सैर सपाटे करो और मर जाओ। ये तो आखिरत के मामला तो वो लोग इतना नहीं सोचते, हम मुसलमान भी उसी डगर पर चल पड़े तो कैसे ज़िंदगी गुजरेगी हमारी। भाई खाएँ पिएँ कौन मना कर रहा है, घूमें फिरें, हंसे बोलें, खुश रहें, खूब सोएं, तो कौन मना कर रहा है, लेकिन गुनाहों से बचें, अल्लाह की मोहब्बत को कल्ब में हासिल करने के जो ज़राए हैं उनको अख्तियार करें। ये क्या बात हुई कि जो खिला रहा है, जो मुनीम दे रहा है, उसी को ही भूल गए। हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे नेमतों में इतने मत गरक हो जाओ कि नेमतें देने वाले मुनीम को ही भूल जाओ। मुनीम किसे कहते हैं, नेमतें देने वाला। नेमतें जो हम कितनी खा रहे हैं, माँ के पेट से अब तक हमें खिला रहा है, पिला रहा है, ऐश करा रहा है, हमें माजूर नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, काड़ा नहीं बनाया, बदशकल नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया, बनाया कि हमें कोई पास बिठाना पसंद ना करे, है ना, बदशकल नहीं बनाया है, अल्लाह ने किसी भंगी घराने में पैदा नहीं किया, चूड़ा चमार नहीं बनाया, वो भी तो इंसानी है। कभी देखा है गटर के अंदर भंगी जमादार डुबकी लगाते हैं और बेचारे वो मेन नालियों के अंदर घुस के फिर उसकी सफाई करते हैं, कभी देखा है, देखा है ना हमने, आपने भी। तो मैं कभी गुजरता हूँ तो कभी नज़र पड़ती है तो मैं रुक जाता हूँ वहाँ, और फिर मैं शुक्र की नीयत से नज़र डालता हूँ जमादार भंगी के ऊपर, अल्लाह पाक अगर तू मुझे ये बना देता तो मैं क्या कर लेता। वो भंगी ने थोड़ी कहा था अल्लाह पाक तू मुझे بنگی بنانا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اس کو بنگی بنا دیا, کسی کو بادشاہ بنا دیا, کسی کو اچھا خوبصورت بنا دیا, کسی کو کالا بدشکل بنا دیا یا بدصورت عجیب شکل و صورت اس کی بنا دی. تو بھائی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کافر بنا دیا, کسی کو مسلمان بنا دیا. تو اب کبھی غور کیا اللہ کی نعموں کو, تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی, یہ بن مانگے بغیر استحقاق اللہ نے ہم پر نشاور کر دی. کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی. تو میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں اور شکر کی نیت ڈالتا ہوں, پھر تھوڑی دیر رک کے پھر آگے بڑھتا ہوں. اس سے نفس جو ہوتا ہے مغلوب رہتا ہے, شر پیدا نہیں ہوتا, تکبر نہیں آتا, بڑائی دل سے نکل جاتی ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ نعمت الہیہ کا یہ مراقبہ کیا کرو, پانچ کم از کم پانچ منٹ تو کر لیا کرو, اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی. سب سے پہلے یہ حضرت فرماتے تھے یہ شکر ادا کیا کرو, اللہ پاک نے تمہیں سور اور کتا نہیں بنایا ہمیں. بھائی کتے نظر آتے نا پھرتے ہوئے, کتے نے تھوڑی کہا تھا اللہ مجھے کتا بنانا, وہ تو اللہ نے اس کو کتا بنایا. اللہ کسی کتے پہ نظر پڑے تو ہم سوچنا چاہیے بھائی اللہ مجھے یہ کتا بنا سکتا, اور یہ جو کتا میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے بنا سکتا تھا, انسان بنا دیتا اللہ پاک اس کو. لیکن اللہ نے ہمارے لیے اچھی چیز انتخاب کری ہے ہر لحاظ سے. اللہ نے انسان بنایا, پھر اللہ پاک مسلمان انسان بنا دیتا, اللہ کا کرم ہوتا, لیکن اور بربادی ہوتی. اللہ کسی ہندو گھرانے میں پیدا کر دیتا, جے رام جی کی کر رہے ہوتے صبح شام مندروں میں جا کے, گو ماتا کا پیشاب پی رہے ہوتے سر پہ ڈال کے اسنان کرتے اور کہتے میں پاک ہو گیا, پوتر ہو گیا پیشاب ڈال کے سر پہ, استغفر اللہ. پتہ چلا انسان تو بن گئے تھے لیکن اللہ دائمی جہنم رسید کر دیتا, ایسے مذہب میں اللہ پیدا کر دیتا. اللہ نے دوسرا کرم فرمایا, انسان بنایا, پھر اللہ نے صاحب ایمان بنا دیا, مسلمان بنایا, اور پھر یعنی جو دائمی جہنم تھی اللہ پاک نے اس سے بھی بچا لیا. پھر اللہ رب العالمین نے اچھے خاندان میں پیدا کیا, اچھے ماں باپ دیے. پتہ اللہ مسلمان تو بنا دیتا لیکن وہی بات کہ کہیں اللہ پاک کسی جھوپڑ پٹی میں یا جہاں گندی نالیاں بہری ہوتی ہیں وہاں اللہ پاک ہمیں پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا پھر بھائی, وہ بھی انسان ہے, کوئی کسی کی حقارت مقصود نہیں ہے. لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے. تو یہ فضیلت اگر ہے کسی میں تو شکر ادا کرے اپنے سے کسی کمتر لوگوں کو دیکھ کے. یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کمتر کو دیکھ کے ہم فخر اور تکبر اس کو اخیر سمجھنا شروع کر دیں, ہم اس پٹی پہ چل جاتے ہیں. ارے اگر کوئی اگر ہم کو کوئی شکل صورت میں, کوئی پیسوں میں یا کسی بھی معاملات میں ہم سے کم نظر آئے تو شکر کرنا چاہیے, فخر نہ کرے, حقیر نہ سمجھو اسے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا چیزوں سے مالا مال عطا کیا, تو نے یہ چیزیں مجھ کو عطا فرمائی. تو ان مراقبے کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک شخص تھا, ٹین رچسٹ پرسن ہے دنیا کے, دس یعنی بہت ہی زیادہ مالدار دس افراد. ان میں سے ایک شخص کا انٹرویو لیا گیا, تو اس کو اتنی دولت تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کتنے دولت ہے اس کی. ویری بات ہے دنیا کے دس امیر ترین ملکوں جو افراد تھے اس میں اس کا نام تھا. تو انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا, آپ کی کوئی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو, اللہ نے آپ کو اتنا دیا, اتنی دنیا آپ کو دی ہے کہ آپ امیر ترین آدمی میں شامل ہیں. اس نے کہا اگر کوئی یہ میری ایک خواہش پوری کر دے تو میں ساری دولت اس کو دے دوں گا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے امیر آدمی بننے کا, میں $5,000-$10,000 کی نوکری کر لوں گا. اس نے کہا کیا وہ خواہش ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں, آپ دیکھیں نا تھوڑی دیر بعد میں رومال لے کے ٹیشو پیپر لے کے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتا ہوں. اس نے کہا ہاں میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں شٹ ڈاؤن جو آپ کی پلکی ہوتی ہے آنکھ ہوتی ہے یہ میری آنکھ نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بہت اذیت ملتی ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آنکھوں میں پانی آتے ہیں, آنکھیں میری لال ہو جاتی ہیں کیونکہ میری جو پلک ہے وہ شٹ ڈاؤن نہیں ہوتی, نیچے ہم ہر تھوڑی دیر بعد جو پلک جھپکتے رہتے ہیں نا وہ اس کی نہیں تھی ایسی آنکھ, قدرتی آنکھیں اس کی ایک کھلی رہتی تھی ہر وقت. کہہ رہا ہے سوتے ہوئے بھی ایسی رہتی ہیں, سوتے ہوئے بھی بند نہیں ہوتی. تو اس سے جو مجھے اذیت ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. سوتا بھی ہوں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پھر میں آدھا جاگ رہا ہوتا ہوں آدھا سو رہا ہوتا ہوں, سر میں میرے درد رہتا ہے اور اس کا دنیا میں کسی کے پاس علاج نہیں ہے. کہہ رہے تو کوئی یہ میری مصیبت دور کر دے اور ساری دولت مجھ سے لے لے. تو پتہ چلا یہ وہ نعمت ہے ایک مثال کے طور پہ کہ جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم دن میں سینکڑوں دفعہ آپ پلک جھپکاتے رہتے ہیں, ابھی تو ہم آگے بڑھے ہی ہیں, ابھی تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آنکھیں کھول کے رکھیں اور پلک کو جھپکائیں مت, دیکھیں کتنی دیر تک, پھر آنکھوں میں تکلیف ہونے لگے گی, جلن ہونا شروع ہو جائے گی, پھر سکون نہیں ملے گا جب تک اس کو جھپکائیں گے نہیں پلکوں کو. تو ایک ادنا سی مثال ہے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب اس کی ان کی پتنی کیا ظاہری حالت تھی بیچاروں کی, تو انہوں نے کچھ بات چیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے ارشاد فرمایا تو شکر ادا کیا کر اللہ کا. بہرحال وہ شخص چلا گیا. तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेचारा किस बात का शुक्र अदा करे, इसमें तो कोई ऐसी चीज दिखी नहीं रही कि इसकी हैयत देख के इसको ये तो इसके अंदर कोई चीज ऐसी हो कि ये शुक्र अदा करे अल्लाह का, यानी हाथ पैर नहीं होंगे वल्लाह आलम, इसी तरह का कोई मामला होगा। तो आपने इरशाद फरमाया, क्यों ये पेशाब आराम से नहीं कर लेता, क्या ये पेशाब आराम से नहीं कर लेता? पता चला कि अगर पेशाब रुक जाए तो जाके देखें हॉस्पिटल में लोगों की चीखें निकल जाती हैं, चीखें, किसी का फुफला बंद हो जाए, स्टूल पास ना हो तो फिर ये पेट काट के, ये आँख काट के फिर वहाँ से स्टूल का अखराज किया जाता है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ख़राब हो गया या कोई वजह हो जाती है बाग दफ़ा, तो फिर पेट से फुफला खारिज होता है, स्टूल पास होता है। ये वो नेमतें हम बता रहा हूँ सर जिसका हमें शौर ही नहीं है, एहसास भी नहीं होता, खा रहे हैं पी रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी माशाल्लाह हमारा सही है। भाई ये सारी चीज़ों के नेमतों का ये मुराकबा और ये गिनवाने का मतलब क्या है कि हम अल्लाह की अताअत करें और उसकी नाराज़गी से बचें, उसको ऐसे कामों से हम बचें जिससे अल्लाह का गज़ब और उसकी नाराज़गी हमारे ऊपर आए। तो हमारा और अल्लाह का कोई जोड़ नहीं है, उसके बावजूद अल्लाह पाक हमको अपना वली अपना दोस्त बनाने को कह रहे हैं। और जब कोई अल्लाह पाक किसी को अपना दोस्त बना लेता है बबरकत तक़वा, तो दुनियावी लेवल पर भी जब कोई दोस्त दूसरे दोस्त को परेशान नहीं छोड़ता तो अल्लाह पाक हमें कैसे छोड़ देगा परेशान? फिर अल्लाह से बढ़ के कौन दोस्त है? हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, अल्लाह अपने यारों को बे यारों मददगार नहीं छोड़ता, अल्लाह अपने यारों को बे यारों मददगार नहीं छोड़ता। लेकिन यारी पैदा करने की कोशिश तो करे आदमी, वो तरीके वो ज़राए तो अख्तियार करे। अल्लाह की मदद कुछ शराइत के साथ होती है, नाफरमानियों के बावजूद, गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह पाक हमें बहुत मज़े करा रहे होते हैं। लेकिन भाई अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी बेशी हमारी ज़िंदगियों में, तो हम चाहिए कि हम देखें मैं कौन कौन से गुनाहे कबीरा में हम लोग मुब्तला हैं, तो उसकी तरफ फिक्र करें, लिख लें पर्चे पे कि मेरे अंदर ये बड़े बड़े कबीरा गुनाह हैं जिसमें मैं मसरूफ़ रहता हूँ, मशगूल रहता हूँ, तो फिर उन गुनाहों की इसलाह कराएं। और जैसे जैसे आदमी उन गुनाहों की इसलाह करवाता रहता है तो फिर दोस्ती जो है उसमें शिद्दत आने लगती है, और दोस्ती जो है उसमें गाढ़ापन आने लगता है, दोस्ती में ताकत पावर आने लगती है, और दोस्ती अल्लाह से मजबूत हो जाएगी, मज़ीद तरक्की होगी दोस्ती। दोस्ती में भी तो तरक्कियाँ होती हैं ना भाई। तो जैसे जैसे आदमी तकवे में इजाफा करता है, वैसे वैसे बंदा और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक जो है दोस्ती का, उसमें इजाफा होता चला जाता है। इस पर हज़रत वाला रहमतुल्लाह यही इरशाद फरमाते थे कि दोनों तरफ, फिर एक ऐसा मुकाम आता है कि दोनों तरफ से इशारे हो गए तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए, दोनों तरफ से इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। तो ये कैफियत पैदा हो जाती है बंदे की। लेकिन वही बात कि भाई हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। वो कीमत क्या है अल्लाह की दोस्ती की? वो तक़वा, गुनाहों से बचने का गम उठाना, क्योंकि गुनाहों में अल्लाह ने हमारी आजमाइश के वास्ते थोड़ी सी कशिश रखी है, लज्जत रखी है, मज़ा रखा है, तो हम ये मामूली सा घटिया थर्ड क्लास का मज़ा छोड़ने पे तैयार नहीं है, और इसके पीछे हम अल्लाह की दोस्ती की कुर्बानी दे रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और हिमाकत है। कोई ज़रा से एंड्रॉयड सेट के पीछे, गंदी चीज़ों के पीछे, नंगी फिल्मों के पीछे, लड़कियों औरतों के पीछे, बदनज़री के पीछे, और इसी तरह दीगर गुनाहों के पीछे हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोस्ती को छोड़ दिया। अल्लाह का जो बड़ा हुआ हाथ है ये फ्रेंडशिप का, जो अल्लाह ने आगे बढ़ाया हुआ है, हमने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। अल्लाह ने हाथ बढ़ा दिया लेकिन हम अल्लाह का हाथ बढ़ के नहीं पकड़ रहे, हम तकवा अख्तियार करने पर तैयार नहीं है, बोल नहीं रहे। लेकिन मकसद ही कि अल्लाह में आप बोलते रहें, आप कहते रहें कि मैं तुम्हें अपना वही दोस्त बना लूँगा तकवे के ज़रिए से, लेकिन मैं तो तकवा अख्तियार करूँगा ही नहीं। मुझे तो ये हगने मूतने वाली और पेशाब पात पखाना करने वाली जो मखलूक़ात होती हैं, नामहरम लड़कियाँ औरतें, मैं तो इन्हीं का खूबर हूँ, मैं तो इन्हीं का आदि हूँ, मैं आपकी पाक ज़ात की खुशबू का रसिया नहीं हूँ, मुझे आपकी पाक ज़ात खुशबू का कुर्ब नहीं चाहिए, मुझे आप सल्लम की खुशबू का कुर्ब का नहीं चाहिए, मैं तो गू का कीड़ा हूँ, और गू का कीड़ा गू में ही खुश रहता है। तो हम लोगों का मिजाज इसी तरह का हो गया, हमें पाकी में मज़ा नहीं आता, नापाकी में जब तक हमें नापाकी और गंदगी ना मिले हमें चैन नहीं मिलता। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने भी एक वाक़िया लिखा है, इसी तरह से समझाने को एक आयत है जिसका तर्जुमा फारसी अशार का हज़रत ने उसका तर्जुमा और तशरीह करके बताया कि एक जमादार था, वो इतर मार्केट चला गया कहीं, वो इत्तेफाक़ से वो चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, अब वो तो आदि था गूमूत का, बदबुओं का, उसी में उसकी ज़िंदगी गुजरती थी। उसने पहली दफ़ा इत्रियात सुने, सूंघे उसने, तो वो उसको चूँकि आदत नहीं थी ना, मानूस नहीं था, तो उसको एक गशी आई, चक्कर आया और वहीं गिर गया, खुशबू उसको बर्दाश्त नहीं हुई। अब जहरी बात है, लोग समझे नहीं, पता ही नहीं था, नया बंदा था, लोगों ने कहा शायद ये पता नहीं कौन है, चकरा के गिर गया, तो लोगों ने खुशबू सूंघा उसको, खुशबू से शायद उड़ जाएगा। तो इतर वाले तो अच्छी अच्छी महंगी महंगी इतर की बॉटल्स ला रहे थे उस जमाने के आसपास, उसको सूंघा रहे थे, भाई उड़ जा उड़ जा। तो जितना उसको खुशबू सूंघा रहे थे उतनी उसकी बेहोशी और मजबूत हो रही थी। तो हुआ क्या भाई कि जिस वजह से वो बेहोश हुआ था तो उसकी बेहोशी में और इजाफा हो गया, वही चीज़ उसको सुंघाए जा रहे हैं। बहरहाल उसके फिर भाई वहाँ से गुजरा, उसने देखा अरे मेरा भाई पड़ा हुआ है बेहोश, क्या हुआ? फिर लोगों ने बताया पत्नी यहाँ आया था और ये बेहोश हो गया इस तरह से। तो हंसने लगा, कह रहा है यार इतनी छोटी सी बात है, वो जानता था भाई ये मेरा, हम सब बंगी हैं, तो इसने खुशबू सूंघ ली इसलिए गिर गया ये। उसने कहा तुम लोग सब हटो इससे और उसकी बेहोशी में और इजाफा होगा। फिर वो जाता कहीं से गिलाफत गूट आगे लेकर आता है और फिर उसकी नाक के पास हल्का सा लगाता है, जैसे ही लगाता है वो एक झटके से मुस्कुराता हुआ उड़ जाता है, कह रहा है वाह भाई जजाक अल्लाह, तूने मुझे खुश कर दिया, होश में आ गया, क्या चीज़ तूने मुझे सुनाई है। तो वजह क्या, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह इस मिसाल देने के बाद बता रहे हैं कि इसी तरह बाज़ लोगों को जिनाकारी, बदकारी, हरामकारी में इतना मज़ा आता है, जबकि वो तो पलीदियाँ, बदबूएँ और गंद और सड़ान भरी हुई है। ये मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी रूहें उन चीज़ों की आदी हो चुकी हैं। जब अल्लाह पाक वो बातनी नज़र अता फरमाएगा, जब कल्ब की नज़र जब अल्लाह पाक खोलता है, तो फिर गुनाह जो होते हैं तसव्वुफ में, तरीक़त में, सूरत मिसाली में, पखाने की शक्ल में नज़र आते हैं अल्लाह वालों को। आरिए उसमें अब उनकी जो हिस थी वो पाक हो गई, बातें जो है उनका चमक उठा है, अब उनका कल्ब रोशन ज़मीर हो गया, अब उनकी फहम और फिरासत सही काम करेगी, फिर उनको गंद का एहसास होगा, फिर उनको पता चलेगा वाकई कि ये बदबू वाली चीज़ है, बदबूएँ आती हैं बाकायदा। इसी तरह नेक अमाल की खुशबू आती है, हर चीज़ की एक बदबू होती है और हर एक चीज़ की खुशबू होती है। याद रखिएगा, एक बुज़ुर्ग थे, उनके को मुरीद था, वो आया आके बैठा, तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कुछ मंदिर की सी बू आ रही है, मंदिर की जैसे बदबूएं होती हैं और बुत परस्ती की बू आ रही है, तुम तो मुसलमान हो मेरे मुरीद हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या वजह है, तुम इसकी तशरीह करो, वजाहत दो मुझे। तो मुरीद शर्मिंदा हो गया, उसने कहा हज़रत माफ़ी चाहता हूँ, एक हिंदू दोस्त था मेरा, उसने मुझे मेरी दावत करी थी घर पे, उसके घर खाना खा के आ रहा हूँ। वही बात कि गैब तो अल्लाह जानता ना, लेकिन वो कश हुआ तो दूसरी चीज़ों से हो गया, लेकिन वही हिंदुओं की चीज़ आ रही थी कि बुध की सी मुझे बदबू आ रही है। तो हर चीज़ की एक बदबू होती है और हर एक चीज़ की खुशबू होती है, याद रखिएगा, लेकिन वो हमें नज़र महसूस नहीं आती, हमारी नाक चुके वो भी पाक नहीं हुई है, हमारा भी बातिन पाक नहीं हुआ, इसलिए हमें खुशबू और बदबू का हमें इदराक नहीं होता। एक होती है ज़ाहिरी खुशबू, एक होती है बातिनी खुशबू। जैसे जो असली जो सैयद होते हैं, सादात होते हैं, तो बग़ैर इतर लगाए उनके वजूद के अंदर से भीनी भीनी ऐसी खुशबू आती है जिसका वो तस्वुर नहीं कर सकता, लेकिन उस खुशबू को सूंघने के लिए नाक भी चाहिए वैसी बग़ैर इतर के। तो पहले आती थी सादात के जिस्म में से, हिकमतों की वजह से, फिर सादात ने खुद दुआ की थी। तो जब कुछ लोग थे जो दुश्मन हो गए थे सादात के, तो उनको पकड़ के मार शहीद कर दिए करते थे, वजह क्या थी, उनके बदनों से खुशबू आती थी जिससे वो पकड़े जाते थे कि ये सैयद हैं। तो फिर उन्होंने दुआ की अल्लाह पाक इस खुशबू का हमारी ख़त्म कर दे, तो फिर उस वक्त से खुशबू ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो अहले नज़र और अल्लाह वाले लोग होते हैं, तो जब कोई असली सैयद उनके पास आता है तो खुशबू उनको आ जाती है, उनको खुशबू आ जाती है। तो खुशबू भी होती है इंसान के अंदर और बदबूएं भी होती है। लाख आदमी नहाए हो, लाख उसने परफ्यूम छिड़के हों और दुनिया बोले वाह आपने बहुत बेहतरीन परफ्यूम लगाया हुआ है, लेकिन वही बात किसी अल्लाह वाले के पास जाएगा, साहिब नज़र होगा, तो अल्लाह वालों को ज़ाहरी खुशबू की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे, वो अंदर की जो वजूद की जो उसके अमाल की जो बदबू होगी उससे उनके दिमाग उनकी नाक सड़ जाएगी। तो एक हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन होता है, हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है बातिन होता है। तो आज हमें गुनाहों में और हरामकारियों में इसलिए इतना मज़ा आता है, मोबाइल पे गंदी चीज़ों में इतनी मज़ा आता है कि हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं, हम लोग आदी हो चुके हैं। चंद दिन किसी अल्लाह वाले के पास रह पड़े, उसकी सोबत में रहें, जिक्रुल्लाह करें, सही गहरा ताल्लुक़ रखें, तो भी ड्रामे वाला, चालाकी वाला, मकारी वाला, दुनिया परस्ती वाला, दो 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 एक के दो और दो चार करने वाला ताल्लुक ना हो, सिर्फ काम निकालने वाली कहानी ना हो, अल्लाह के लिए सही दिल से दिल मिलाएं, अल्लाह के लिए सही इखलास के साथ मोहब्बत रखें, किसी अल्लाह के सच्चे वली से, अपने शेख से, फिर उसके बाद देखें अल्लाह की करम नवाजियाँ कैसी होती हैं। फिर उसके बाद जब ज़ाहिर और बातिन पाक साफ होगा, तो फिर एहसास होता है उस मुरीद को, उस बंदे को, कि पहले मैं क्या था अब क्या हो गया हूँ, पहले मैं क्या था अब क्या हो गया हूँ, जो फ़र्क होता है बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। फिर उसको पलीदगियाँ, गंदगियाँ वाकई महसूस होंगी कि ये गंदगी पलीदगी है, कि फिर रोएगा वो कि क्या मैं बदबुओं में गर्क था, जो बदबुएं वाली चीज़ें थी उनमें मैं खुशबुएं ढूंढता था, मुझे खुशबू नजर आती थी, और जिन चीज़ों में खुशबुएं थी मुझे उसमें बदबू नजर आती थी, क्योंकि फहम बिगड़ जाता है। तो अल्लाह पाक वो फहम को सही कर देते, सही होता है तो फिर सही चीज़ एनालाइज करता है इंसान कि बदबू वाली कौन सी चीज़ है, खुशबूदार कौन सी चीज़ है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, जो लोग ये गंदी चीज़ों में जिना बदकारियों में ख़ास तौर पर फहाशी और यानियत में लगे रहते हैं, ये गधे क्या जाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरूप की खुशबू क्या होती है, ये क्या जाने के जब मदीने पाक से जब कोई पयाम मोहब्बत आता है तो उसकी खुशबू और उसकी कैफियत क्या होती है। हज़रत वाला खुद फरमाते थे, मेरे पीने को सुन लो ए दोस्तों, मेरे पीने को सुन लो ए दोस्तों, आसमानों से मैं उतरती है, यानी अल्लाह की मोहब्बत की शराब। अल्लाह वाले अपना हाल बाव दफ़ा इशारे किनाए में और अशार की सूरत में कह देते हैं कि मेरे पीने को सुन लो ए दोस्तों, आसमानों से मैं उतरती है, कि अल्लाह की मोहब्बत के बोतले और मटके उतरते हैं अल्लाह के इश्क और मोहब्बत के मेरे पीने के लिए। अजीब अजीब तशरीहात हज़रत ने फरमाई। तो भाई ये गुनाह जो है ये इतनी प्यारी चीज़ नहीं है कि हम इनकी वजह से अल्लाह की दोस्ती को ठुकरा दें, अल्लाह के बड़े हुए हाथ को हम रिफ्यूज़ कर दें। और ये सब कब तक है, जब तक हमारी ये जो ऐलान है दोस्ती का अल्लाह पाक ने जो किया उस वक्त तक है जब तक हमारी रूहें हमारे बदन के अंदर हैं, हमारे जिस्म के अंदर हैं। नज़ा का आलम शुरू हुआ, अब वो दोस्ती का जो अल्लाह ने ऐलान किया वो दरवाज़ा बंद हो गया, दारुल अमल बंद हो गया। अब लाख कोई आदमी अपना बरज़ख में अपना अंजाम देख के बोले, अल्लाह मैं आपकी दोस्ती कबूल करता हूँ, तख्वे से रहूँगा, अल्लाह दुनिया में वापस भेज दे। अब नहीं, टाइम गुजर गया। कुरान पाक में अल्लाह पाक इसी चीज़ को फरमा रहे हैं, जो नाफरमान लोग होते हैं जब वो दुनिया से जा रहे होते हैं तो सब मुझसे एक ही बात करते हैं, कोई दूसरा मुझसे कोई बात नहीं करता। क्या बात होती है वो, और जब तुम में से अपने सर पे को खड़ी मौत देख लेता तो सब मुझसे एक ही बात करते हैं, सब मुझसे एक ही बात करते हैं, नहीं कोई दूसरी बात नहीं करता। वो क्या कहते हैं, नज़ा के वक्त अल्लाह दुनिया में वापस भेज दे, थोड़ी मोहलत दे दे, मोहलत टाइम टाइम टाइम। सब मुझसे क्या मांगते हैं, टाइम। आज टाइम है हमारे पास, लेकिन हम ये जो होटल है ना चाय के परांठों वाले होटल, यहाँ बैठे रहते हैं, मगरिब के बाद इशा के बाद जाते हैं और फिर 4-5 बजे उठते हैं, 6-6, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं हम। भाई मना नहीं है लेकिन अहतदाल में बैठो, हंसना बोलना खाना पीना मना नहीं है, लेकिन आप 6 घंटे दोस्तों के साथ आपने गुजार दिए चाय के होटल पे, आपने 10 मिनट कुरान पाक की तलावत की, 5 मिनट अल्लाह का जिक्र किया, नहीं ये नहीं कहा यार आदमी घूमे फिरे नहीं, दोस्तों के साथ नहीं बैठे। भाई अल्लाह को साथ रखते हुए दुनियावी की मामलात को लेकर चलो ना, ये अल्लाह पाक जो तुम्हें कहकहे लगवा रहे हैं, चाय पिलवा रहे हैं, ये जो मौज मस्तियाँ आ रही हैं रब की करम नवाजी की वजह से तो आ रही है। अल्लाह ना करे अल्लाह अगर कैंसर पैदा कर दे तो खुदा की कसम मैं देखता हूँ तुम कैसे होटल में बैठ के कहकहे लगाते हो, तुम मस्जिद से नहीं निकलोगे, मस्जिद से नहीं निकलोगे। दोस्त आएंगे भाई जान छोड़ो मेरी यार, मरने वाला हूँ, कैंसर हो गया, मुझे आखिरत की तैयारी करने दो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मस्जिद से ही बंदा फिर नहीं निकलेगा भाई। तो अगर अल्लाह प्यार से चल रहे हैं तो उसको मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग अल्लाह को भूल जाएं और बिल्कुल ही बिल्कुल तीसरे दर्जे में, थर्ड क्लास दर्जे में अल्लाह को हम रखें, जुमा जुमा याद करें, जुमे की नमाज में जाके बाकी 99% ज़िंदगी शैतान के खुतुआत पे चलें और 1% कभी अल्लाह की भी मान लेते हैं हम लोग, ये रेशो थोड़ी चलेगा, ये रेशो तो बहुत ही ख़राब है, तबाकुन रेशो है, तो ये एवरेज तो सही नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं सब मुझसे मोहलत मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, तो फिर टाइम के ऊपर बात होगी तो कई घंटे का बयान हो जाएगा भाई के वक्त को हम किस तरह बर्बाद करते हैं। इसी तरह मोबाइल हाथ में आता है तो लोग सुबह से लेकर रात तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, यंगस्टर आजकल बस या तो खाना खाते वक्त, वॉशरूम जाते वक्त या किसी ज़रूरी काम के वक्त रखते हैं, वरना जैसे ही फारिग हुए उस काम से फ़ौरन मोबाइल लेके बैठ गए, 2-4-6 घंटे तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह अपने फजूलियात वक्त को देखे कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं भाई। किसी वक्त भी ये खाका बंद हो जाएगा, अल्लाह ने हमें मौत का वक्त नहीं बताया हुआ कि तुम्हारी जो है उम्र इतनी है, नहीं पता, छुपा दिया अल्लाह ने। हम लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि पत्नी आबे हयात की है भाई, या शायद अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी उम्र जो है 110 साल है, इस तरह से हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन वही कहीं अगर किसी को ऐसे लोगों का कोई बयान अगर किसी अल्लाह वाले का भेज दो तो शुरू में वो बयान सुनेगा, टाइम देख के बोलेगा ओ 55 मिनट का बयान, भाई बहुत लंबा है, कौन सुने, छोड़ो यार। तो पता चला कि ये कितनी बड़ी अल्लाह के साथ नमक हरामी चल रही है, 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल के लिए टाइम है, 6-6 घंटे होटलों पे बैठने के लिए टाइम है, खुराफात में दिल लगियों के लिए, बदमाशियों के लिए, गुनाहों के लिए, आराम कारों के लिए टाइम ही टाइम है। पढ़ने लिखने के लिए टाइम है, कोचिंग सेंटर के लिए टाइम है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए टाइम है, सब चीज़ों के लिए टाइम है, दुनिया की नौकरी कारोबार के लिए 15-15 घंटे का टाइम है। 15 दिन में 50 मिनट का, 1 घंटे का बयान सुनने में मौत आती है। लोग कहते हैं यार इतना लंबा बयान कौन सुनेगा उसको, वही बात क्या, वही अल्लाह पाक ने अगर कोई अजाब डाल दिया, कोई मुसीबत अगर पेश कर दी, डाल दी अल्लाह ने, फिर सुबह से लेके रात तक लोग बयान सुनते हैं। एक साहब हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बयान नहीं सुनते थे, वो ये इसी तरह की बातें करते थे, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटलाइज हो गए और बिल्कुल ही बिस्तर पे वो पड़ गए बेचारे, बिस्तर पे उनका पेशाब पखाना होता, कहता है मेरे पास कोई टाइम नहीं है, सिर्फ मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बयान सुनता हूँ मुख्तलिफ अल्लाह वालों के। तो अल्लाह को अभी याद किया, अभी याद आया बयान सुनने का, अब तुम्हें नहीं लग रहा लंबा बयान। जब आफियत चैन सुकून दिया तो तकब्बुर में आए, में अकड़े में, साहब बहादुर के पास टाइम ही नहीं है। तो अब इसलिए बड़े बड़े उलमा कराम ने और मशायख ने, अल्लाह वालों ने एक तरीका निकाला है, यानी अल्लाह वालों ने अपने मुकाम से नुजूल किया कि भाई चलो तुम्हें 1 घंटे का बयान लग रहा है, चलो अब शॉर्ट ऑडियो का एक सिलसिला निकाल दिया। व्हाट्सएप पे अब छोटे छोटे शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स आते हैं, आप सुनते रहते ना 2 मिनट के, 3 मिनट के, विद इन 5 मिनट बाद इशादा बस, चलो भाई 1 घंटा नहीं तुम 5 मिनट की बात सुन लो, हो सकता है 5 मिनट की बात में से कोई बात तुम्हारे एक दिल पे क्लिक कर जाए और तुम तकवा अख्तियार कर लो। तो अल्लाह वालों ने बयान को 5 मिनट का कर दिया मुख्तसर, कि जिसको टाइम नहीं है, जिसको लंबा लग रहा है बयान, भाई वो 5 मिनट का बयान सुन ले ना। तो ये क्या चीज़ है, ये बहुत ख़तरनाक अलामतें, बहुत ख़तरनाक अलामतें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह से दूरी और किल्लत मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह पाक तो तैयार है हमारी तौबा को कबूल करने के लिए, तो सब टाइम मांगते हैं अल्लाह फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि मौत के वक्त सब मुझसे मोहलत मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, और सब ये कहते हैं अल्लाह दुनिया में वापस भेज ताकि उस तरह ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से तू चाहता था। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, उनकी एक बात है, बात जो मुसलसल ये कहे जा रहे हैं, नाराज़गी में चिड़ गए चिड़, अगर अल्फाजों पर गौर करें, अल्लाह फरमा रहे हैं इनकी एक बात है, बात जो मुसलसल कहे जा रहे हैं, हरगिज़ उनको एक मोहलत टाइम, एक सेकंड उनको नहीं दिया जाएगा, और आड़ कर देने वाली चीज़ मौत इनको वाकई होकर रहेगी। तो जो वक्त की हम कदर कर लें, कुछ लोगों को कोचिंग सेंटर जाना होता है, जिक्र की मजालिस छोड़ देते हैं, वो कोचिंग सेंटर जाना होते हैं। तो आज इन दो दो टकों के ऊपर, ज़रा ज़रा सी तालीम के पीछे अल्लाह वालों की मजालिस छोड़ देते हैं, अल्लाह के जिक्र की मजालिस छोड़ देते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी में हफ्ते में 1 दिन क्या, 15 दिन में क्या, महीने में 1 दिन नहीं होता अल्लाह के लिए 1 घंटा। तो फिर कहना ना मुसलमानों पे इतना अजाब क्यों आ रहा है, आज हमारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं रहा, अल्लाह के मामलात के लिए वक्त नहीं रहा। आप जिक्र की मजालिश में जाना होता छोड़े, आज नमाजों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता, दुकान पर होते हैं नमाजें छोड़ते रहते हैं, या तो सब जाते हैं जब 1 रकत 2-3 रकतें निकल चुकी होती हैं, मुश्किल से 4थी रकत मिलती है, या अक्सर की तो हैबिचुअल है, वो तो फिर जाते ही उसी वक्त है जब जमातें निकल चुकी होती हैं, दुकान पर ज़रा रश कम होता है, तो कहते हैं यार भाई अब ज़रा रश कम हो गया मैं आता हूँ, तो फिर वो जाते हैं अकेले नमाज पढ़ के आते हैं, किसी मुफ्ती साहब से नहीं पूछते भाई मैं क्या करूँ उस मजबूरी की हालत में। हर चीज़ में दुनिया 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 चल रही है, कहाँ से मामला फिर आगे दुरुस्त होंगे, पूरी दुनिया में हम लोग पिट तो रहे, जलील होते रहे, किस तरह होंगे, किस तरह से मैं नजर आएगा। फिर गफलत के पर्दे के हमारी वो धुलाई हो रही है ऊपर नीचे से, लेकिन हमारी समझ में बात नहीं आ रही, इसलाह फिर भी नहीं हो रही। बर्मा हमारे सामने, शाम हमारे सामने, फलस्तीन हमारे सामने, कश्मीर हमारे सामने, पूरे दुनिया में हम जलील और ख्वार हो रहे हैं, कुत्ते से बदतर हमारी मुसलमानों, हम मुसलमानों की औकात हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, हमें खुद अपने नहीं पूछ रहे, काफिर बाज रहम खा लेते हैं लेकिन मुसलमान मुसलमान को नहीं पूछ रहा, लेकिन उतनी धुलाई पिटाई के बावजूद हमारा तकबर ख़त्म नहीं हो रहा, आना ख़त्म नहीं हो रही, अकड़ ख़त्म नहीं हो रही, तकवा नसीब नहीं हो रहा, गुनाहों को नहीं छोड़ रहा है, हरामकारियों को छोड़ने के नहीं हम लोग छोड़ रहे, दीन की मुखालफत अभी तक हम लोग कर रहे हैं, दाढ़ी शरीफ पर्दों का अक्सर हम लोगों के लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, मौलवियों को अलग अभी तक गालियाँ दे रहे हैं, अल्लाह उलमा और मशाइख को बुरा भला अभी तक हम लोग कह रहे होते हैं, अक्सरियत हम लोगों की अभी तक यहूद और नसारा के तरीक़ों के ऊपर चल रहे होते हैं, हिंदुओं के तरीके पर, ईसाइयों के तरीके पर, यहूदियों के तरीक़ों पर दाढ़ियाँ उड़ा रहे हैं, दाढ़ियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीफ पर्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कह लगाते हैं जो लोग तकवे पे चलते हैं, दीन पे चलते हैं, सब मुसलमानी तो कर रहे हैं, इतनी धुलाई पिटाई के बावजूद भी हमारी अगर इसलाह नहीं हो रही तो किस दिन होगी, किस क्या वक्त रह गया देखने को, क्या मौत के वक्त इसलाह होगी, वही बात नफा का आलम देख के, बरवक देख के। उस वक्त अगर बात समझ में आई तो फिर समझने का कुछ हासिल नहीं होगा। अकल मंद आदमी वो है कि इन सारी बातों को उस वक्त समझे जब रूह जिस्म के अंदर हो, वक्त हो, मोहलत हो, जवानी हो, ताकत हो, तंदरुस्ती हो, आफियत हो, पैसा हो, सारे सुकून अल्लाह ने मज़े दिए, उस वक्त समझना है इन बातों को, उस वक्त अपनी मंजिल को समझना है, डेस्टिनेशन को समझना है, उस वक्त ज़िंदगी में यू टर्न लेना है, उस वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करना है। कर जवानी तौबा शेवाए पैगम्बरी, फारसी का एक मिसरा है कि जवानी में तौबा करना ये पैगंबराना शान है, शेवा पैगंबरी है, पैगंबरों का तरीका है। बुढ़ापे में भी लोग तौबा नहीं करते, लेकिन बुढ़ापे में भी अगर करी 70-80 साल में तो क्या उसमें पर जान थोड़ी है, मज़ा थोड़ी है, तो ठीक है अल्लाह माफ़ फिर भी कर देंगे, क्योंकि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी गोश्त खाना छोड़ देता है, भेड़िया ना गोश्त बड़े शौक से खाता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है भेड़िया फिर गोश्त नहीं खाता, ला कर उसके सामने अच्छा हिरन का गोश्त डालें वो चला जाएगा मुँह मोड़ के, क्योंकि अब उसके दाँत नहीं रहे। तो बुढ़ापे में अगर गुनाह छोड़े तो क्या छोड़े भाई, वो तो आपके अंदर ताकत भी नहीं रही, अब गुनाह छोड़े तो क्या गुनाह छोड़े, क्योंकि आप बूढ़े हो गए, अब आप में दम नहीं है आपके जिस्म में और आसाब में ये बास गुनाहों के करने का, अब छोड़े तो क्या छोड़े, आप अगर चलो नहीं छोड़ो, चलो करके दिखाओ तो कर भी नहीं सकते, तो छोड़ना ही बेहतर है, तो ये इस पर कोई अजर थोड़ी मिलेगा। अब इसकी मिसाल नहीं, उसमें नाबीना बोले ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बदनजरी नहीं करता, मेरे सामने तो हज़ारों लड़कियाँ आती हैं, उसको बुलाएगा भाई अल्लाह तुम्हें इस मुजाहिदे की बरकत से आपको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ने आपको बिनाई नहीं दी, लेकिन इसमें आपको बिनाई ना होने का इस पर जो मुजाहिदा आप जो कर रहे हैं इस पर सवाब तो मिलेगा, लेकिन नज़र बचाने का सवाब आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका उसको आला ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अल्लाह ने आपको चीज़ ही नहीं दी, तो नज़र बचाने का उसको मिलेगा जिसको अल्लाह ने नज़रें दी हुई हैं, और जिसके अंदर शहवत है, जिसके अंदर लहू में गर्मी है, जिसके अंदर शहवत है, जज्बात हैं जिसके अंदर है, और अल्लाह ने उसको अख्तियार भी दिया है, और फिर उसके बाद अल्लाह ने उसको नज़रें दी और हुक्म दे दिया अब नज़र मेरी मोहब्बत में बचाओ, तो फिर जिसकी नज़र अल्लाह की नज़र के साथ जुड़ी होगी तो फिर किसी गैरुल्लाह पर नज़र नहीं डालेगा वो, जिसकी नज़र जुमला याद रखिएगा, जिसकी नज़र अल्लाह के ऊपर होगी, जिसकी नज़र अल्लाह की नज़रों के ऊपर होगी फिर किसी गैरुल्लाह पर नज़र नहीं डालेगा, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि हम फलां को देख रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि अगर हमारी नज़र किसी पर है तो किसी की नज़र भी हमारी नज़र के ऊपर है, अल्लाह की नज़र हमें देख रही है। वह हुआ माकुम अईना मा कुंतुम, कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है वह हुआ माकुम अईना मा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, वह हुआ माकुम। CCTV कैमरे को उनकी बात करते ना कि भाई ये लगा हुआ है देखो खबरदार कैमरे की आँख आपको देख रही है, लेकिन इसको भी बाद लोग धोखा दे के चले जाते हैं, शॉपिंग सेंटर जाते हैं, चोरी की चीज़ें ली और चले गए, बाद में वो लोग देखते रहते हैं वो कैमरे में, लेकिन कहते हैं पता नहीं कौन था कौन क्या ले गया, तो उसको तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ऐलान कर रहे हैं तो देखो मेरी नज़र को कोई धोखा नहीं दे सकता, वो हुआ माकुम अईना मा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह, और एक और आयत थी अलम या आलम भी अल्लाह यारा अलम या आलम, ए मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता, अलम या आलम तुझे नहीं मालूम, अलम यारम भी अल्लाह यारा कि हर वक्त तू मेरी निगाह में है। एक आयत में फरमा रहे हैं कि हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ तू जहाँ भी है, दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं ऐ मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता तू हर वक्त मेरी निगाह में है, यानी तू अपनी निगाहें कहाँ डाल रहा है, तू अगर किसी पे कहीं निगाह डाल रहा है गलत तो ये तो देख मैं मेरी निगाहें तेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं तुझे देख रहा हूँ और तू उधर देख रहा है। डॉक्टर अब्दुल्ला आरफी रहमतुल्लाह ने भी यही इरशाद फरमाया था इस शेर की सूरत में, नजर सुए मरकत कदम सुए दुनिया, मरकत कहते हैं कब्रिस्तान को, के कदम सुए मरकत नजर सुए दुनिया, यानी जो हमारी जो सांस है एक सांस के बाद जो दूसरी सांस आ रही है जिंदगी का एक लम्हा कम हो रहा है, हम कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्त के साथ साथ जो एक दिन निकलने का मतलब है हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो गया, हमारा हर कदम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा है। कदम सुए मरकत नजर सुए दुनिया, और नजर जो हमारी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रही, दुनिया की रंगीनियों से, गुनाहों से, आरामकारियों से, तो फरमाते हैं कदम सुए मरकत नजर सुए दुनिया, किधर जाता है किधर देखता है, किधर जाता है किधर देखता है, यानी बेवकूफ़ आदमी, मतलब आगे देख के चलो, अगर कोई मिसाल के तौर पे रोड पे जा रहा हो सीधा सीधा, लेकिन उसने गर्दन पीछे मोड़ के इनको उठाएं, वो गर्दन जो है वो पीछे मोड़ के जो है वो देख रहा हो तो लोग उसको डांटेंगे, वो बोलेंगे भाई कैसे बेवकूफ़ आदमी तुम सीधे सीधे जा रहे हो तो आगे देख के चलो ना, ये तुम पीछे देख के क्यों चल रहे हो, उड़ा देगा गाड़ी वाला तुम्हें, तो जिस सिमत में आदमी चलता है उसको उसी सिमत में देखना चाहिए। तो डॉक्टर हजरत आरफी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कब्र की तरफ जा रहे हो, मौत की तरफ जा रहे हो, हर लम्हे हर एक मिनट भी अगर ज़िंदगी का हमारा जो गुजर गया तो वो एक मिनट ज़िंदगी का कम हो गया, तो हम तो कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और नगर का है हमारी गुनाहों की तरफ, दुनिया की रंगीनियों की तरफ, तो बेवकूफ़ी वाला मामला है। तो तो आदमी को वहीं देखना चाहिए, उसकी तैयारी करे मतलब आखिरत की, जहाँ उसकी ज़िंदगी उस तरह गुजर रही है। इसी तरह बहुत से लोगों को सालगिरह का बड़ा शौक़ होता है, सालगिरह मनाने का, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये ना भाई तालियां बजाने का, और ये तो ये सारे हराम काम है, गुनाह कबीरा के काम है, यहूद और नसारा के तरीक़े। और आप सल्लम ने इरशाद फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत लाइफ स्टाइल इख्तियार करेगा उसी के साथ उसका हशर होगा। हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे देखो सालगिरह में एक बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ छुपा हुआ है, सालगिरह, सालगिरह ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, गिर गया, तुम खुशियाँ मना रहे हो, केक मंगा रहे हो, किस बात का, अपनी मौत का, कि ज़िंदगी का एक साल कम हो गया। अरे ये तो गम का मामला है, एक साल ज़िंदगी कम हो गया, जल्दी जल्दी अपनी फाइल को दुरुस्त करो, तो हुक़ुक़ुल्लाह बात की ये मतलब है। अगर वाकई सालगिरह मनानी है तो उस अंदाज़ से मनाओ कि अपना ऑडिट करो, चेक एंड बैलेंस करो कि देखो कितने तुम्हारे मामला अभी दुरुस्त हुए, कितने अभी नहीं हुए, हुक़ुक़ुल्लाह कितने पूरे हुए, फ़राइज़ नमाजें जो हैं फ़र्ज़ नमाजें अभी तक पूरी हुई नहीं हुई, जो छोड़ी हुई उसकी कज़ा उम्री पूरी करी नहीं करी, कज़ा पूरे रोज़े रखे नहीं रखे। ये है सालगिरह का मकसद, तो भाई आखिरत की तैयारी कि एक साल ज़िंदगी का अल्लाह पाक मेरा कम हो गया और मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब आदमी चेक करे कि पाँच साल वाले अमाल जो मेरे थे कि अब भी वही हैं, उसमें कुछ बेहतरी आई है। ये होता है चेक एंड बैलेंस का तरीका, ये होता है ऑडिट का तरीका। पता चला 10 साल पहले भी देख रहे थे नंगी फिल्में, टीवी, औरतों को गलत चीज़ें, 5 साल बाद भी देख रहे थे, अभी तक देख रहे हैं, ये क्या ज़िंदगी है, ये तो घटती वाहियात ज़िंदगी है। तो अल्लाह ना करे इस हालत में अगर आ गए इस्लाम वक्त, अगर मौत का आ गया तो फिर हम क्या लेकर जाएंगे। और हदीस शरीफ में जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा, उसी हालत में उठाया जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इस तरफ तवज्जो दें, तो वक्त को ज़ाया ना करें। जो अल्लाह पाक जो कुरान पाक में फरमा रहे हैं, हर शख्स मुझसे आदमी वक्त और मोहलत मांगता है, टाइम मांगता है, लेकिन उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो वक्त को कीमती बनाएं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो लोग वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं और सही नहीं काटते, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते और वक्त को, वक्त की कदर नहीं करते और उसको सही नहीं काटते, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वक्त उनको काट के रख देता है, वक्त उनको काट के रख देता है। सही ना, तो इसलिए वक्त की कदर करनी है, क्योंकि ये जवानी, ये तंदुरुस्ती हर वक्त नहीं रहती। जो आज वक्त हमारे पास और आज आपके पास है, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 साल बाद भी वैसे ही वक्त हमें मिला हो, तंदुरुस्ती का आफियत का पता नहीं क्या हालात हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बाज़ चीज़ें उनको उस चीज़ के आने से पहले गनीमत समझो, कदर करो और उसकी, उससे पहले उसकी तैयारी कर लो। पहला क्या आता था कि तंदुरुस्ती से बीमारी को, तंदुरुस्ती से पहले, यानी जो तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, तंदुरुस्ती की हम कदर करें, किस चीज़ से पहले, बीमारी से, क्योंकि भाई बीमारी भी साथ में लगी रहती हैं, कभी आदमी बीमार हो जाता है, कभी लंबा बीमार पड़ जाता है, फिर ना मामूलात रहते हैं, ना अल्लाह का इश्क रहता है, ना मोहब्बत रहती है, ना आदमी बयान कर सकता है, ना बयान सुन सकता है, पर लंबा लंबा पड़ा हुआ होता है। सही है ना भाई, तो ये इसलिए आप सल्लम फरमा रहे हैं कि तंदुरुस्ती आफियत की कदर कर लो बीमारी से पहले। नंबर दो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, ये जवानी हमें मिली हुई है, ताकत मिली हुई है हमें, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं, कुरान जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कज़ा रोज़े रख सकते हैं, जो कज़ा नमाजें हमने छोड़ी हुई है, वो जो फ़राइज़ वाजिबात वाले मामलात हैं वो हम कर सकते हैं, अभी जान है हमारे अंदर। लेकिन ये कुछ पता नहीं है भाई कि बुढ़ापा आ जाएगा, फिर लोगों को हम देखते हैं कि एक वक्त आता है कि लोग बेचारे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे बिल्कुल नॉर्मल चुस्ती के साथ, आज कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जी कमर का मोरा खिसक गया, कमर में दर्द हो गया बेचारे, अब मसला हो गया, कोई वेट उठा लिया, कोई ना कुछ हो गया, अब वो बैठ के नमाज़ पढ़ी जा रही है, वो पहले जैसा दमखम नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान तनवरी की तरफ जा रहा है। तो भाई जो हमें आफियत फिटनेस मिली हुई है, इसमें जल्दी से अपनी फाइल को हम कंपाइल कर लें, उसको तैयार कर लें आखिरत की तैयारी के लिए, ये मुराद है। और तीसरी क्या चीज़ थी, फरागत को मशगूलियत से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, ये बहुत बड़ी नेमत है। क्या मतलब कि जो हमें फरागत मिली हुई होती है, जैसे कोई 9 to 5 की जॉब कर रहा है बंदा और उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है माशाल्लाह, तनख्वाह भी अच्छी है और कोई उसके ऊपर इतनी बड़ी लाइबिलिटी भी नहीं है और उसको सुकून भी है, बीवी बच्चे भी आराम से, वो भी आराम से, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं लगी हुई, आराम से उसका सारा सेटअप सही चल रहा है। तो अब ये जो फरागत उसको मिली है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती भी दी, ताकत भी दी, आफियत भी दी, और फिर अल्लाह पाक ने उसको मोहलत दी है, मोहलत। अब ये 5 बजे आ गया घर पे मिसाल के तौर पे, अब वो रात को 12-1 बजे सोएगा तो 5 घंटे से कितने घंटे हो गए भाई, लगा लें 7-8 घंटे तक ये फारिग है। पैसे भी हैं माशाल्लाह, घर में रोटी पानी भी है, सब हंस रहे हैं बोल रहे हैं, खुश, अल्लाह ने خوشحال گھرانہ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ, ہم سب کو عافیت سے رکھے. تو اب یہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پیسہ بھی دیا, اس کو عافیت بھی دی, اس کی ضروریات بھی پوری کر دیں, اور اس کو میں فراغت بھی میں اس کو دی. لیکن یہ پھر بھی جو فراغت دی, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, 5-6 بجے آئے, اس کے بعد ریموٹ لے کے بیٹھ گئے, ایل سی ڈی پہ ننگے ناز دیکھ رہے ہیں, گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا بھائی, عام ٹی وی تو جہاں فارغ بیٹھے بھائی وہاں بے حیائی شروع کر دی, یا تو عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا محرموں کے ساتھ, یا موبائل لے کے گندی چیزیں دیکھیں گے موبائل میں بیٹھ جائیں گے, یا گالیاں دینے لگیں گے, یا پھر غیبتیں, کچھ نہیں تو غیبت سویٹ ڈش گھر والوں کے بیٹھ کے غیبتیں کرنی شروع کر دیں. تو فراغت یہ اللہ پاک ہمیں اپنے لیے دے رہے ہیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے, یعنی فراغت کی قدر کر لو. کیوں؟ اگر یہ اللہ نے جو ہمیں فراغت دی ہے وہ اپنے لیے دی ہے کہ جلدی جلدی میری یاد میں لگو, قرآن پاک پڑھو, ذکر اللہ کرو, معمولات کرو, حقوق اللہ پورے کرو, حقوق العباد پورے کرو. مشغولیت سے پہلے فراغت اللہ نے دی تو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو, ہنسو بولو, بیوی بچوں کا کے ساتھ ہنسنا بولنا یہ بھی عبادت ہے, اس پر ثواب ہے, اس پر ثواب ہے. جو ایک حدیث پاک کا خلاصہ منقول ہے, اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس پہ فرشتے ثواب لکھتے ہیں. تو صحابہ کرام کو بڑی حیرانی, انہوں کا یار وسلم وہ تو حق زوجیت ادا کر رہا ہے وہ شخص, تو اس میں ثواب کی کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے, اس میں تو صحبت میں تو مزہ آتا ہے, اللہ نے ایک لطف رکھا ہوا ہے, تو یہ ثواب کیوں ہو رہا ہے اس کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں, اگر یہی کام اپنی بیوی کے علاوہ کسی نامحرم کے ساتھ کرتا, زنا اگر کرتا تو عذاب نہیں آتا, گناہ نہیں لکھا جاتا. اس لیے بیوی کے ساتھ وہی کام کرنے کے اوپر, صحبت, حق زوجیت ادا کرنے پہ فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں, کیا اللہ کی رحمت ہے. تو یہ بھی آدمی زنا کے بچنے کے لیے اگر آدمی شادی کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا کرتا ہے تو ثواب لکھتے ہیں فرشتے. تو اللہ تو بہانے بہانے سے اپنی رحمت لٹا رہے ہیں. یا بعض لوگ کچھ اتنا غلو کر جاتے ہیں, وہ آفس سے آتے ہیں, جو بھی فراغت سے آتے ہیں, اس کے بعد قرآن پاک لے کے ایسا بیٹھتے ہیں کہ نہ قرآن پاک چھوڑتے ہیں, نہ ذکر اللہ, اس کے بعد پھر ذکر اللہ لے کے بیٹھ گئے, نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں, نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں. اب بیوی کہہ رہی ہے بھائی ہم بھی تو پڑھے رہا ہوں, میں ہم تو صبح سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ آئیں تو آپ تو بایزید بستامی بن کے بیٹھ گئے, ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے, ہمیں بھی تو نظر ڈالو. ہاں ہاں ابھی ذرا فارغ ہو جاؤں. تو بھائی یہ دین نہیں ہے, مطلب اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حقوق العباد تلف کر دے, یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مینیج کر کے لے کے چلے, ماں باپ کا حق ادا کرے, بیوی بچوں کا حق ادا کرے. اللہ کے حقوق تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ لی آپ نے, اور اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر, یہ ہو گئے معمولات ہمارے. بس باقی جو ہمیں جان لڑانی ہے وہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا ہے, گناہ سے بچنا ہے, یہ سب اللہ کے کھاتے میں جا رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں پتنی کون کون سی نفلی مستحب عبادات کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے. تو اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی زیادہ ٹینشن مت لو, نہ دماغ پہ بوجھ ڈالو, کیونکہ آج کل ہمارے دل دماغ اور اعصاب کمزور ہیں. حضرت فرماتے تھے فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کر لو, بس آسان طریقہ, فرائض واجبات اور سنت موقع, اس کے بعد گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا لو, ہر گناہ کبیرہ سے بچو, انشاءاللہ ولی اللہ بن کے مرو. اب اس سے زیادہ کو آسان طریقہ ہوگا, فرما دے دیکھو ایک کام نہ کرو اور مزدوری پوری لو. کون سا کام؟ اللہ کو ناراض کرنے کا کام, گناہ کا کام. اور کیا مطلب؟ گناہ کرنا چھوڑ دو, ایک کام مت کرو, مزدوری پوری لو اور اللہ کی ولایت لے لو, اللہ کی دوستی لے لو, اللہ کو خوش کر دو, پر ایک کام کرنا نہیں ہے, چھوڑ دو ایک کام. اب کوئی بولے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا, آپ بس آپ آئیں گے میرے پاس اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, بس آپ یہاں بیٹھے رہیں. وہ کہہ گیا یہ کیسا مجھے امپلائر ملا ہے, بغیر کام کے کہہ رہے اتنی بڑی مزدوری لے لو. تو جو اللہ فرما رہے ہیں نا اولیاء المتقون, میں ولی دوست بنا لوں گا, بس گناہ کرنا چھوڑ دو, یعنی کام مت کرو ایک گناہ کا, مزدوری پوری لو, اور نبیوں کے بعد دوسرا درجہ ولایت کا مل رہا ہے. بڑی ٹیکنیکلی بات ہے یہ, اگر ہم کچھ نفل پڑھیں گے, مستحب اعمال کریں گے, اس میں جان لگے گی, کچھ بعض دفعہ مال بھی خرچ ہوتا ہے, وقت بھی خرچ ہوتا ہے, لیکن گناہ سے بچنے میں نہ جان, اس میں کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. کوئی عورت سامنے سے آ رہی ہو, نظر نیچے کر کے گزر جاؤ بھائی, اللہ کا قرب خاص پا لے گا آدمی کہ 1,000 تہجد پڑھنے کے 1,000 جو آدمی تہجد پڑھے گا وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے گا جو آدمی تہجد تو نہیں پڑھا لیکن صرف فرائض واجبات پورے کر رہے لیکن نظر بچا رہا ہے, تو اس کو 1,000 تہجد سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا, کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی سے بچا ہے, وہ گناہ سے بچا ہے, حرام کاری سے بچا ہے, دل کو توڑ لیا لیکن اللہ کے قانون کو ٹوٹنے سے بچا لیا. ایسے لوگ متقی کہلاتے ہیں, ایسے لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں, ایسے لوگ کہلاتے ہیں سچے اولیاء اللہ, جن کا قال اور حال ایک ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ. तो भाई अल्लाह की सब दोस्ती जो अल्लाह ने अपना हाथ दोस्ती का बढ़ाया हुआ है सब उसको थामेंगे ना अल्लाह पाक। अल्लाह पाक हम सबको अपना अपनी दोस्ती का जो मेयार है उस पर हम सबको पूरा कर उतरने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के बड़े हुए हाथ को पकड़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें कदर दाने की तौफीक बख्शे और अल्लाह की जो तवक्कात और उम्मीदें हमसे अल्लाह पाक हमें जैसा देखना चाहते हैं अल्लाह पाक हम सबको वैसा बना दे। आखिर में हज़रत पाक रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे बस ये पांच अमाल बयान कर दिया करो बहुत ज़रूरी हैं। तो जो भी शख्स ये पांच अमाल कर लेगा उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अल्लाह पाक उसको अपना वली और दोस्त नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का अहतमाम करें। बग़ैर तजवीद के पढ़ना गुनाह कबीरा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आदमी डर के मारे पढ़ना छोड़ दे कुरान पाक की मेरी तजवीद दुरुस्त नहीं। मतलब ये है कि फ़िक्र करें एहसास करें। एक डेढ़ महीने की मेहनत है किसी भी कारी साहब से नूरानी कायदे से पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह दो महीने में तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। और एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है मर्दों की नहीं और ये मूछे बिल्कुल बारीक रखें और चारों इमामों का इजमा है कि एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है और चावल के दाने के बराबर भी अगर दाढ़ी कम हुई तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुंडाना हराम है और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। मूछें बिल्कुल बारीक रखें। बड़ी मूछ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा यानी जन्नत में जाना नहीं होगा। नंबर दो मुनकर नकीर कब्र में गुस्से की हालत में आएंगे। नंबर तीन कब्र में उसे अज़ाब दिया जाएगा। तो ये बड़ी मूछ इतनी प्यारी नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें और बलाएँ उठाएँ। तो दाढ़ियों को बढ़ाएँ मूछों को कतरवाएँ। लोग उल्टा करते हैं मूछों को बढ़ाते हैं और दाढ़ियों को मुड़ाते हैं तो उल्टा काम नहीं करना चाहिए। या बाज़ लोग एक मुट्ठी दाढ़ी रखते हैं तो एक मुट्ठी मूछ भी रखते हैं। तो भाई एक मुट्ठी दाढ़ी रखनी है एक मुट्ठी मूछ नहीं रखनी। मूछ को कम करना है दाढ़ियों को दाढ़ी एक मुट्ठी रखनी है। और तीसरा अमल है मैं असला मिनल काबैन मिनल इबारे फिन्नार मर्दों की नहीं ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो दो सूरतों में मर्दों की टखने खोल के रखना वाजिब है। कब? जब हम खड़े हों चल रहे हों खड़े और चल रहे हों टखने खोल के रखें जहन्नम में जलने की वईद है। और चौथा जो अमल है नज़रों की हिफाज़त करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुल लिलमुमिनीन यग़ुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाज़त करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। और आप ख़वातीन औरतों को भी आप कह दें मोमिन औरतों से वो भी नज़रों की हिफाज़त करें और शर्मगाहों की हिफाज़त करें। मर्दों और औरतों को दोनों को अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं नज़रों की हिफाज़त का। और एक हदीस शरीफ में ये भी ऐलान नाज़िरा मंजूर अली रसूल अल्लाह सल्लम की बद्दुआ है अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनज़री करे। अब बताइए जो औरतों के जो आशिकीन होते हैं वो छोड़ते ही नहीं किसी औरत को। काली हो बुढ़ी हो मासी हो जमादारनी हो बाप इतना गंदा पलीत ये बदनज़री का मर्ज़ होता है। जब आदमी बिल्कुल बदनज़री करता रहता है तो फिर एक वक्त आता है कि मेयार इंतखाब भी आदमी का ख़त्म हो जाता है। फिर बुढ़ियों को ऐसी ऐसी जो जमादारनी होती हैं जो अगर वो पास से भी गुजर जाए तो बदबू आ जाए आदमी को देखना पसंद ना करे। लेकिन ये लानती मर्ज ऐसा है जो लोग इसके आदी होते हैं तो उनको भी ऐसे देख रहे होते हैं जैसे जन्नत की कोई अफसर उतरी है ना। तो ये पागलपने का नफसियाती मर्ज है। और हज़रत फरमाते थे ये बेवकूफ़ी का गुना है। बेवकूफ़ी का मतलब है कि हर गुना में कुछ ना कुछ मज़ा होता है। इसमें तो मज़ा ही नहीं है कि वो अपने घर चली गई तुम अपने घर आ गए लेकिन उसकी आंखें नज़र तुम्हारी आंखों के से टकरा रही हैं। अब दिल में उसकी तस्वीर चिपक गई है नमाज़ पढ़ रहे हो अल्लाह अकबर कर रहे हो नियत बांधी सामने उसका तसव्वुर फिर कही कही के अंदर ये कैफियत चल रही है। तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है ना। कोई हासिल भी नहीं है कोई हुसूल भी नहीं है। और लानत की बद्दू अल्लाह आप सलम फरमा रहे हैं अल्लाह लानत फरमा उस पर जो बदनज़री करे दूसरों की माँ बहन बेटियों को देखे। और अल्लाह उस पर भी लानत फरमा जो ख़ुद को बदनज़री के लिए पेश करे या वो ख़वातीन आ जाती हैं जो बेपर्दा हरेक नामहरम के सामने आ जाती हैं। दोनों पे लानत किसकी? मामूल अंबिया जिनकी नहीं कायनात बनी है। चैन मिलेगा पढ़ता रहे ऐसा आदमी नमाजें जितनी पढ़नी है अगर बदनफरी से नहीं बचेगा तो खल्ब के अंदर जो आग लगी हुई है लानत की जो बद्दुआ की में जो चल रहा है सल्लम की जब तक उससे तौबा नहीं करेगा सुकून नहीं मिलेगा उसको। यह ख़ास तौर पे मोबाइल जो आजकल ये फितना चल रहा है दज्जाली दज्जाल का बहुत बड़ा ये फितना इस वक्त बना हुआ है। अच्छे अच्छे लोग इसका शिकार हो गए बच्चे से लेके और 80 साल के बूढ़े तक इस दज्जाली फितने का शिकार हो चुके हैं। कोई छोड़ने पे तैयार नहीं है अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह जिसको तौफीक दे। तो नज़रों की हिफाजत करें। और नंबर पाँच दिल को बिल्कुल पाक साफ रखें गंदे ख्यालात से। और दिल में ख़ुद से लेकर ना है गंदे ख्यालात शैतान डालता रहता है वो अलग बात है। तो क्योंकि नस्बत माल्ला ताल्लुक माल्ला वो कल्ब के अंदर अल्लाह को अता फरमाते हैं। तो जो दिल पहले से नापाक गंदा होगा गंदे ख्यालात की वजह से تو اس کے قلب میں اللہ اپنی دوستی کا جھنڈا نہیں لہراتے. تو اللہ کا دوست اگر ہمیں بننا ہے دل کو بھی پاک صاف رکھیں, بس اللہ ہی اللہ ہو چاروں طرف, پھر اللہ اپنی دوستی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں. اور ان پانچ اعمال میں سے اسے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا اور نظروں کی حفاظت اور دل کو پاک صاف رکھنا, یہ خواتین کی نہیں بھی مشترک ہیں. خواتین دو کام کر لیں, یہ داڑھی اور ٹخنوں سے بھر پائنچے جو مردوں کی نہیں, اس کی جگہ خواتین دو اعمال کر لیں تو ان کے بھی پورے پانچ اعمال ہو جائیں گے, تو وہ بھی انشاءاللہ ولی اللہ بن جائیں گی. تو ایک تو اپنے شوہر کی فرما برداری اختیار کریں, بدتمیزی نہ کریں شوہر کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ رہیں. اور دوسرا جو وہ معاملہ ہے شرعی پردے کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ وہ بھی ولی اللہ بن جائیں گے. اگر کوئی ظالم شوہر ہے کچھ ہے تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے, پھر وہ پھر اصلاح کروائیں کسی سے, یا پھر اس کے کچھ الگ احکامات ہوتے ہیں. لیکن عام روٹین میں تو عام حالات میں شوہر, کیونکہ زیادہ تر بعض ظالم بیویاں بھی ہوتی ہیں, شوہر جو ہوتے ہیں وہ اتنے برے نہیں ہوتے لیکن بیویوں کو بہت برے نظر آتے ہیں, تو یہ بھی غلط چیز ہے. تو جس درجے میں جس حد تک جو برائی ہو اس کو اس درجے تک رکھنا چاہیے. اگر 20% کی برائی ہے تو وہ 100% کی نہیں لکھنی چاہیے. یہی تو ہمارا معاشرے کا علمی ہے, یہی حال شوہروں کا. اگر 20% کی اس میں برائی ہے تو ہمیں 80% نظر آتی ہے, اور جو پیارا محبوب ہوتا ہے تو اس کی 100% برائیاں بھی 5% نظر آتی ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں ہے ہماری زندگیوں میں؟ جو پیارا ہوگا اس کی 100% جو برائیاں ہوں میں 5% نظر آئیں گی, اور جو محبوب نظر نہیں ہے اس کی 10% برائی ہمیں 100% نظر آئے گی. بعض لوگ اپنے جو والدین ہوتے ہیں یا بہن بھائیوں کے کہنے پہ بیویوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں, کیونکہ پیارے ہیں نا, ان کی جو 100% برائی ہیں وہ 5% نظر آ رہی ہیں. بیوی چونکہ پیاری نہیں ہے تو وہ 5% جو اس کے اندر بیوی کے برائی ہے تو وہ 100% نظر آ رہی ہے, اس سے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لیکن یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اللہ کا ڈر ہی تو نہیں ہے, اللہ کا ڈر ہی تو نہیں ہے. جب بندے کے قلب کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے تو انسان خود منصف بن جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہر بات کرتے ہوئے اور ہر عمل کرتے ہوئے زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہے پھر, کیونکہ اس کے قلب کے اندر اب اللہ کا خوف آ گیا. اور ان پانچوں عمل کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پانچوں عمل کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یا رب کریم یا رحمن رحیم. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوگی تو شان رحمت سے اس کو بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا کوئی عمل تیری شان شان نہیں ہے, محض اپنے فضل و کرم سے اپنی شان رحمت سے یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے. اور ذکر کی مجالس کی جتنی بھی فضیلتیں جو ہمارے پیارے آخرت جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, وہ سب کی سب ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اور اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو عطا فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے, خاص طور پہ اللہ فلسطینی مسلمانوں پہ. اللہ فلسطینی مسلمانوں کی دعا کرتے کرتے اللہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ خیر. ہم کہتے ہیں اللہ مصر کے مسلمانوں پہ رحم فرما, لبنان کے مسلمانوں پہ رحم فرما, اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ رحم فرما, رحم فرما. یا اللہ ہم تو خود تو اپنے اوپر رحم نہیں کھائیں گے اعمال درست کر کے تقوی اختیار کر کے. یا اللہ تجھے ہی رحم کرنا ہوگا. یا اللہ اپنی شان رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی سچی ولایت اور دوستی عطا فرما. یا اللہ وہ شیرانہ صفات اور حوصلہ اور ہمت عطا فرما کہ ہم نفس اور شیطان کو کچل دیں لیکن تجھے ناراض نہ کر سکیں. یا اللہ اپنا خصوصی تعلق ہم سب کو عطا فرما, قرب خاص عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما, جتنی بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہودیوں کو اور اس کے ساتھیوں کو اور جتنے بھی کفار جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ برباد کر دے, صفحہ صفحہ ہستی سے مٹا دے, عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کو ایک اور نیک کر دے. یا اللہ سعودی عرب اور پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یعنی یا اللہ ایمانی غیرت ہم تمام امت مسلمہ کو عطا فرما, بے غیرتی کے مرض سے ہم سب کو نجات دے دے, بے حسی کے مرض سے ہم سب کو نجات دے دے. یا اللہ ان کی مصنوعات کا 100% بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے اور ہمارے مرشدین کی اور کل مومنین مومنات کی کل جنات کی سب کی کامل مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما, سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.